الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اچھا، آخری کلاس میں ہم کیا بات کر رہے تھے؟ جی بھیا، یاد ہے؟ جی، چلے آپ بتا دیں. اچھا، کھود رہے تھے. کیا کھود رہے تھے؟ آپ نے پروگرام بتایا. ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ مارا تھا، اور پھر وہ ساری تفصیل تھی اس کی، جزا اللہ. اور آپ کچھ اور بتا رہے تھے، یہی والی بات بتا رہے تھے، غزوہ خندق کا واقعہ. تو ہم نے، یعنی پچھلی کلاس میں ہی ہم نے شروع کیا تھا غزوہ خندق کا واقعہ. یہ جو غزوہ تھا، اس کا ایک اور بھی نام ہے، غزوہ خندق کا ایک اور بھی بڑا مشہور نام ہے. کسی کو یاد، نام یاد ہے؟ یہاں پہ آن لائن بھی کوئی، جیسے انہوں نے غزوہ خندق کیا تھا، بیٹل آف دا ٹرنچز، وہ تو انگریزی میں ہو گیا نا. تو ایک اور بھی نام سے مراد یہ کہ اردو میں یا عربی میں، جی، احزاب، احزاب، غزوہ احزاب، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر پوری کی پوری ایک سورت موجود ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ احزاب، ٹھیک ہے. سورہ احزاب کے اندر بہت ساری باتیں، جس میں سے کہ ایک مشہور بات جو ہے وہ اکثر ہماری کلاس کے اندر آتی رہتی ہے، پردے کا حکم کب نازل ہوا، پردے کا حکم کب نازل ہوا، ہے نا. تو وہ پردے کا حکم جو ہے وہ غزوہ، وہ سورہ احزاب کے اندر نازل ہوا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں سورہ احزاب کے اندر، حالانکہ بہت بڑی سورت نہیں، یہ چھوٹی سورت ہے. اس کے شروع کے اندر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کوئی 20 یا 20 سے زیادہ آیات جو ہیں وہ اس غزوہ احزاب کے بارے میں نازل فرمائی. اتنی ساری آیات قرآن مجید کی غزوہ احزاب کے بارے میں، اور اس میں بڑی زبردست قسم کی تفصیلات ہیں. یہ انتہائی اہم غزوہ تھا. یہ سمجھنے کے ڈیفنسو جو لڑائی کی نا مسلمانوں نے، یعنی ان کے اوپر لوگ اٹیک کرتے تھے اور مسلمان جو ہے وہ پھر ڈیفینڈ کیا کرتے تھے اپنے آپ کو، تو یہ اس کے سلسلے کی آخری لڑائی تھی، ٹھیک ہے نا، آخری لڑائی تھی. پہلے بدر کے اندر جو ہے وہ مسلمان کو ایک قافلے کے لیے گئے تھے، پھر انہوں نے جو ہے وہ 1000 سپاہیوں کے ساتھ اٹیک کر دیا تھا، تو مسلمانوں نے پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا تھا، ٹھیک ہے. لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ وہاں پہ جا کر کے ڈیفینڈ کرنا پڑ گیا تھا. اور غزوہ احد کے اندر بھی وہ جو 3000 کافر آئے تھے اٹیک کرنے کے لیے، تو ان کے وہاں پر بھی ڈیفینسو ہی لڑائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو لڑائی تھی، یہ بھی ڈیفینسو لڑائی تھی، کیونکہ 10000 کا لشکر آیا تھا، یا کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ 12000 کافر آئے تھے، اور کچھ میں 15000 بھی لکھا ہوا ہے. تو 10 سے لے کے 15000 تک کافروں کا یہ لشکر آیا تھا، اور مسلمان جو تھے وہ ٹوٹل 3000 تھے، 3000 تھے، ٹھیک ہے. اس کا پیچھے کا ہم نے آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ بتا دیا تھا کہ اچھا، چلیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کو، اس کی ساری پلاننگ جو ہے وہ کن لوگوں نے شروع کری تھی؟ غزوہ احزاب کی پلاننگ یہودیوں نے شروع کری تھی. اور وہ کون سے والے یہودی تھے؟ وہ اصل میں نام پوچھنا تھا. ایک جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکال دیا تھا، آپ کو نام یاد ہے؟ وہ جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپیل کر دیا تھا ان کے گھروں میں سے نا، ٹھیک ہے، وہ قبیلہ بنو نغیر تھا. جی، انہوں نے صحیح جواب دیا، بنو نغیر، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو ہے وہ بڑے غصے میں تھے، بہت ہی زیادہ جل رہے تھے اپنی اس غصے کی آگ میں. تو ان کے سرداروں نے جو ہے نا پھر یہ کام شروع کیا تھا کہ مکہ مکرمہ آئے تھے، پھر غطفان گئے تھے، پھر اور دوسرے لوگوں سے بھی بات کری، اور سب کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے یہ لوگ آئے، ٹھیک ہے. اٹیک کرنے کے لیے اس دفعہ بھی یہ لوگ اسی ڈائریکشن سے ہی آئے جس ڈائریکشن میں احد کے اندر آئے تھے نا. احد بھی نارتھ سائڈ پر ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہے اس دفعہ تھوڑا سا नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, जहां पे जबले सुलह है या सना है, तो उस तरफ से ये लोग अटैक करने के लिए आए थे। तो वहां पर फिर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला के मशवरे से नबी अलैहिस्सलाम ने खंदक खोदी थी, और खंदक खोदने का वाकया जो है वही हम पिछले क्लास के अंदर पढ़ रहे थे। तो उसमें जो आपको बताया था ना कि सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हो को जो जगह अलॉट हुई थी उनके वाले टीम को, तो वहीं पर जो है ना एक चट्टान आ गई थी जो किसी से टूटी नहीं रही थी। हत्ता के किताब में लिखा हुआ है कि वो अपने जो वो जो टूल्स मारते थे ना उस चट्टान के ऊपर, वो चट्टान इतनी सख्त थी कि वो टूल्स टूट जाते थे। ठीक है, तो किसी ने तो ये मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं कि इस चट्टान को इधर ही रहने देते हैं और हम जो है ना वो खंदक को थोड़ा सा ऐसे कर्व कर लेते हैं, है ना। तो उसके ऊपर जो है ना दूसरों ने कहा कि नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने हमें जो कहा है ना करने के लिए, जो लाइन बना दी है ना नबी अलैहिस्सलाम ने, तुमने यहां से यहां तक खंदक खींचनी है, खंदक बनानी है, तो हम उसी लाइन पर ही खंदक बनाएंगे। तो भाई अगर ये मसला पेश आ गया तो नबी अलैहिस्सलाम भी मौजूद ही है यहाँ पर, तो उनके पास जाकर के पूछ लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो टीम थी, इस टीम की खास बात क्या थी? है आप ना आज बोलेंगे तो हमें आवाज ही नहीं आएगी। आप हाँ, जिन्होंने आइडिया दिया था इसमें सलमान फारसी रजदान जो है वो खुद थे, जिनको एक एक्सपीरियंस भी था, जिनको के पूरा इसकी नॉलेज हासिल थी। ठीक है, वो खुद थे। अच्छा एक और भी इसके अंदर बड़ी स्पेशल बात थी इस वाली टीम के अंदर, कि ये जो टीम थी ना, वैसे तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो टीम्स बनाई थी ना, तो वो टीम्स नबी अलैहिस्सलाम ने मुहाजरीन की अलग टीम्स बनाई थी और अंसार की अलग टीम्स बनाई। कितने कितने लोग थे एक एक टीम के अंदर? 10 10 लोग थे। ठीक है ना, और 10 10 लोगों को नबी अलैहिस्सलाम ने 10 10 गज की जमीन जो है ना वो अलॉट कर दी थी। एक किताब में लिखा हुआ है 40 गज अलॉट करी थी हर टीम को, और कहीं पे 10 लिखा हुआ है। खैर रात, तो 10 10 लोगों की टीम थी। तो ऐसी टीम बनाई थी कि एक टीम में पूरे मुहाजरीन होते थे, दूसरी टीम में सारे मुहाजरीन होते थे, तीसरी टीम में सारे मुहाजरीन होते थे, और फिर उसके बाद और टीम जो होती थी उनमें सारे अंसार, सारे अंसार, सारे अंसार, यानी अंसार और मुहाजरीन की नबी अलैहिस्सलाम ने अलग अलग टीम्स बनाई थी। ठीक है, हालांकि उस वक्त तक जो है वो बहुत ज्यादा भाईचारा और अखुवत वगैरह सब कुछ हो चुका था, सारे लोग जो है वो एक साथ मिल मिल करके रहते थे, बहुत भाईचारा वगैरह। तो ऐसा लगता है कि भाई अब तो नबी अलैहिस्सलाम को अलग अलग नहीं करना चाहिए था, अंसार को अलग और मुहाजरीन को अलग, मिक्स टीम बना देनी चाहिए थी। ठीक है, अंसार और मुहाजरीन मिक्स मिक्स हों टीम्स के अंदर, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। तो उसके ऊपर उलमा ने लिखा कि ये जो फैमिली बेस के ऊपर टीम्स बनती है ना, तो ये कोई बुरी चीज नहीं है, अगर बुरी होती तो नबी अलैहिस्सलाम ऐसा ना करते कभी। ठीक है जी, अब्दुल्ला बिन उबई भी इसके अंदर शामिल था। हाँ वो जो मुनाफिकीन थे वो भी शामिल तो थे, ठीक है, वहां पर वो लोग भी मौजूद थे, वो लोग भी वो ज्यादा काम नहीं करते थे जरा काम चोरी के जरिए से, लेकिन वहीं पे मौजूद थे जहाँ पे ये सारे खंदक वगैरह खुद रही थी ना। ठीक है, अब उसमें अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो खुद कितना शामिल था ये तो नहीं लिखा हो कहीं पर जी। हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने लिखा कि अगर वो मिक्स टीम होती मुहाजरीन और अंसार की, तो अब्दुल्ला बिन उबई ने जो है ना फिर मुहाजरीन के साथ कुछ ना कुछ लड़ाई वड़ाई करनी करते रहने थी। हाँ हो सकता है, अच्छा पॉइंट है, ठीक है माशा अल्लाह। तो बहरा अच्छा, तो हर टीम में अलग अलग थे मुहाजरीन अलग अंसार अलग, लेकिन ये वाली जो टीम थी ना इस टीम के अंदर दोनों मिक्स थे। वो मिक्स क्यों थे? क्योंकि मुहाजरीन की भी ये ख्वाहिश थी कि भाई जो सलमान फारसी रतनान है ना उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो हमारी टीम में हो, और अंसार की भी ख्वाहिश थी कि सलमान फारसी रतान जो है वो हमारी टीम में हो। ठीक है, तो अब दोनों की तरफ से ख्वाहिश थी ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि एक टीम ऐसी बनाई कि जिसके अंदर ना सलमान फारसी रतान जो थे जो ना मुहाजरीन में से थे ना वो अंसार में से थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलुल बैत, है ना, सलमान जो है ना ये तो ना मुहाजरीन में से है ना ये तो अंसार में से, ये तो मेरे घर वालों में से है ना। अब सलमान फारसी रहता का आपको पता है ना कि ये ऐसे थे कि जिनका कोई घर वाला नहीं था, है ना, ये तो फारिस से जो है वो हिजरत करके इतने 100 साल के अंदर जो है वो यहाँ पे पहुंचे थे, कोई फैमिली नहीं थी, गुलाम बना लिया था यहूदी ने इनको, है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने इनको इतनी मोहब्बत दी, इतनी मोहब्बत दी कि फरमाया सलमान मिन्ना अहलुल बैत, हमारे अहले बैत में से है ये, हमें से है ये, ठीक है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो थोड़े से अंसार लिए, थोड़े से मुहाजरीन लिए, और सलमान फारसी को इनका टीम लीडर बना दिया, ठीक है। तो ये इस टीम की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। बहरहाल तो आप ने जब वो कुदाल मारी थी ना, ठीक है, तो तफसीर की किताब के अंदर हमने एक और चीज देखी थी जो जहन से निकल गई थी कि नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त जो है ना वो कुरान मजीद की एक आयत भी पढ़ते थे। एक दफा मारा तो आप ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, तम्मत कलिमत रब्बे का सिदका, तम्मत कलिमत रब्बे का, यानी तुम्हारे रब के का जो कलमा है ना, तुम्हारे रब की जो बात है वो पूरी हो गई, ठीक है। एक दफा मारा, फिर जो है वो लाइटनिंग क्रिएट हुई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि आपको आपकी उम्मत जो है ना वो यमन के महलात को फतह कर लेगी। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जब दूसरी बार बार मारा ना कुदाल को उस चट्टान के ऊपर, तो इसी आयत को पढ़ा, तम्मत कलिमत रब्बिका सिदकन व अदलन, ठीक है। एक लफ्ज और ऐड कर दिया इसके अंदर, फिर जो है वो लाइटनिंग क्रिएट हुई, फिर जो है वो महलात नजर आए रोम के, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि रोम भी फतह कर लेंगे आपके साहब। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जब तीसरी मरतबा कुदाल मारी ना, तो इस आयत को नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी तिलावत फरमाई, तम्मत कलिमत रब्बिका सिदकन व अदलन ला मुबद्दिला लिकलिमाती, उसके कलिमात को कोई तब्दील नहीं कर सकता, अल्लाह ताला की बात को कोई चेंज नहीं कर सकता, अल्लाह ताला हैज डिक्रीड दिस, है ना, कि मुसलमानों को फतह नसीब होगी। तो ये मामला मुकम्मल हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो एक और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने लिखा है यहाँ पर, कि इससे हमें ये भी पता चलता है कि
बारिश
तीसरी मरतबा जो है वो फारिस के, हाँ, यमन, फारिस, रोम, ऑर्डर जो है वो कहीं पे पहले रोम, पहले फारिस, फिर उसके बाद यमन, कहीं पे लिखा है पहले फारिस, पहले फिर रोम, फिर उसके बाद यमन, लेकिन यही तीन थे जिन पे के महलात नबी दिखा दिए गए थे। तो इससे जो है ना वो हमें ये पता चलता है कि अगर नॉन मुस्लिम्स का कोई तरीका है ना, तो मुसलमान जो है वो उस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज के अंदर कोई उसके अंदर कोई हराम चीज ना हो, है ना, शरीयत के कोई खिलाफ बात ना हो, तो मुसलमान उसको यूज कर सकते हैं, बैटल के अंदर भी यूज कर सकते हैं, बैटल के अलावा दूसरे कामों के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन मुस्लिम्स के तरीके के अलावा नॉन नॉन मुस्लिम्स के बनाए हुए जो वेपन्स होते हैं, उन वेपन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की एक मशहूर तलवार जो थी वो इंडिया की बनी हुई थी, इंडियन तलवार थी, हिंद की तलवार, ठीक है। तो लेकिन नॉन मुस्लिम से पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनसे पढ़ने के दौरान जो है ना फिर अपने दीन को ही भूलना शुरू हो जाए, अपने दीन के खिलाफ ही जो है वो सोचना शुरू हो जाए, इसकी तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं। इस वजह से जो मुसलमानों का तरीका होता था ना, हमेशा से हमेशा तरीका ये रहा है, गुलाम बनने से पहले पहले, ब्रिटिश का गुलाम और यूरोपियंस का गुलाम बनने से पहले पहले मुसलमानों का तरीका ये होता था कि मुसलमान अपने जो छोटे बच्चे होते थे ना, छोटे बच्चे, उनको जो है ना कभी भी नॉन मुस्लिम्स के पास नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए, कभी भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है उस वो अभी इमेच्योर होता है, ठीक है ना, उसका जहन जो है वो इतना क्लियर नहीं होता, उसके पास इल्म नहीं होता, उसके पास तजुर्बा नहीं होता। तो अगर टीचर नॉन मुस्लिम होगा तो वो टीचर तो बड़ी आसानी से बच्चों को जो है वो अपनी चीजें बता देगा, अपनी चीजें सिखा देगा, उनके दिल को जो है वो अपने दीन के बारे में नरम कर देगा, ठीक है ना। तो छोटे बच्चों को कभी भी नॉन मुस्लिम्स के पास नहीं भेजा या नॉन मुस्लिम्स के तरीके नहीं सिखाए, ठीक है ना। लेकिन जब ये पक्के हो जाते थे ना मुसलमानों के पास पढ़ करके, जब इनका ईमान पक्का हो जाता था, ये पक्के मुसलमान बन जाते थे, जब ये बड़े हो जाते थे, यूनिवर्सिटी एज को पहुंच जाते थे, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये नॉन मुस्लिम्स के बात सीखने के पास भी सीखने के लिए जाते थे, ठीक है ना। नॉन मुस्लिम से जो है वो लैंग्वेज सीखने के लिए जाते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को भेजा था ना, पीछे हमने सीरत क्लास में भी पढ़ा था कि तुम इब्रानी सीख करके आओ, है ना। तो बड़े होने के बाद भी नबी अलैहिस्सलाम दूसरों के पास भी सीखने के लिए भेजते थे, ठीक है। आज जो है वो हमने क्या करना शुरू कर दिया कि हमने जो है ना वो छोटे छोटे बच्चों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, तो अमेरिकन सिस्टम, तो चाइनीज सिस्टम, तो फलाना सिस्टम, है ना, छोटे बच्चों को, तो वो छोटे बच्चों से जो है ना उसी जमाने से फिर उनका ईमान खराब होना शुरू हो जाता है, जब बड़े होते हैं तो उस वक्त खत्म हो चुका होता है उस वक्त उनका ईमान, ठीक ठीक है, तो ये गलत तरतीब है, इसका फिर हमें नुकसान हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस ये गजबे के अंदर बहुत सारे जबरदस्त किस्म की बातें आते हैं, देखिए हम क्या क्या करते हैं इसमें कवर। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने मशवरा किया था वगैरह। अच्छा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इस पूरे जो मेहनत हो रही थी खंदक खोदने की मेहनत, तो इसमें नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने बाकायदा झंडे झंडे भी बनाए। ठीक है, जैसे कि पीछे भी हमने पढ़ा था कि जब भी किसी गजबे पे भेजते थे ना मुसलमानों को, तो झंडा होता था, वो झंडा किसी सहाबी को दिया जाता था, ये झंडे बरदार होते थे, ठीक है ना, फ्लैग बेयर। तो इसमें ना मुहाजिरीन का झंडा अलग था, जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु को वो झंडा अता किया गया, और साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले नबी अलैहि सलाम ने अंसार का झंडा दिया। ठीक है, तो ये फ्लैग बेयरर्स बन गए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो तो सहाबे कराम ने सबने खूब मेहनत के साथ खंदक खोदनी शुरू करी। तो एस्टिमेट ये था कि ये जो खंदक खोदने का टाइम है ना, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स थे, एग्जैक्ट जो है वो साइज था, लेंथ थी, तो इसके अंदर 8 दिन लगने थे। ठीक है, लेकिन सहाबा कराम ने इतनी ज्यादा मेहनत से काम किया, एक्स्ट्रा काम किया, ओवरवर्क ओवर टाइम किया सबने, ठीक है ना, तो ये खंदक जो है वो 8 दिन के बजाय 6 दिन के अंदर खुली। ठीक है, क्योंकि होता ये था कि कुछ सहाबा जो है वो जो ज्यादा तगड़े होते थे ना, ज्यादा माशाल्लाह मजबूत, वो ज्यादा तेजी से काम कर लिया करते थे, बाकी भी मेहनत कर रहे होते थे, लेकिन हर बंदा तो तगड़ा नहीं होता ना, तो वो जरा ज्यादा आहिस्ता से काम कर उनका हो रहा था, तो जिनका काम जल्दी खत्म हो जाता था ना, वो बैठ करके चाय पीना नहीं शुरू कर देते थे। हमारे यहाँ क्या होता है, काम खत्म होगा जो हम चाय पियेंगे, ठीक है, तो वो चाय नहीं पीते थे, बल्कि वो क्या करते थे कि जो उनके जो जो दूसरे साथी होते थे ना, जिनका काम थोड़ा सा स्लो हो रहा होता था, वो उनके साथ मिल जाते थे, ठीक है, तो उनका काम भी जो है वो तेज करना शुरू कर देते थे। ठीक है, तो इस तरह से मिलजुल करके सबने जो है वो 6 दिन के अंदर ये खंदक खोद ली, वरना 8 दिन लगने थे इसके अंदर। जी, कोई पूछ रहा था सवाल, आप पूछ रहे थे
तो झंडे किसकी
वो किस कलर के थे, कलर जो है वो कहीं लिखे हुए होंगे हमारी इस वाली किताब में तो नहीं लिखे, वरना उमन झंडे जो है वो सफेद कलर के, सफेद कलर के तो वो उसके लिए होता था, काले कलर के झंडे होते थे, तो पीछे हमने पढ़ा था, काफी अरसा हो गया कि बदर के अंदर, बदर के जमाने में हमने झंडों वगैरह पे पढ़ा था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो काफिर थे ना, उन्होंने फिर एक और जो है वो बहुत बड़ा मसला किया। ठीक है, इन काफिरों का जो असल जो वो था इंस्टिगेटर जो था वो यहूदी था, हुयई बिन अख्तब, ठीक है ना, हुयई बिन अख्तब था कि जो कि बनू नुज़ैर का एक सरदार, उसने ही सारा का सारा शुरू किया था ना, लोगों को लेके गया था मक्का मकाना वगैरह। तो अब जो है ना, इसने एक और बहुत गंदी हरकत करी कि यहूदियों का एक कबीला बनू कुरैजा नाम का, बनू कुरैजा, ठीक है ना, वो लोग भी मदीना मुनव्वरा के अंदर ही रहते थे। ठीक है, तो अभी जो है ना वो लोग, उन लोगों के साथ मुसलमानों का कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई थी, बल्कि उनके साथ मुसलमानों की एग्रीमेंट, नबी अलैहि सलाम उनके साथ एग्रीमेंट थी, जैसे कि बनू नुज़ैर के साथ भी एग्रीमेंट थी। नबी अलैहि सलाम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे, तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट ही डिड, ठीक है ना, वो ये थी कि यहूदियों के कबीलों के साथ नबी अलैहि सलाम ने एग्रीमेंट्स कर लिए, ठीक है ना, बिल्कुल फर्स्ट थिंग क्या किया, बिल्कुल पहला काम क्या किया, वो किसी को याद, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाई, ठीक है ना, बिल्कुल पहला काम मस्जिद नबी बनाना था, और उसके साथ जो है वो ये वाला काम था। फिर उसके बाद एक और भी बहुत बड़ा काम बिल्कुल शुरू में कर दिया था नबी अलैहि सलाम, वो भी किसी को याद, शुरू के कामों में से एक और बहुत बड़ा काम क्या किया था, मस्जिद नबी बनाई, यहूदियों के साथ जो है वो एग्रीमेंट्स किए, और एक और अभी भी मेरे ज़हन में आया तो हमने तो आपके सवाल कर लिया। क्या बैत, बैत का काम तो नहीं, वो तो पहले हो चुका था, है भाईचारा, हाँ ठीक है ना, भाईचारा यानी एक अंसार को बुलाते थे, एक मुहाजिर को बुलाते थे, हाँ भी तुम दोनों भाई भाई हो, ठीक है ना, अब जो अंसारी है वो इस मुहाजिर का ख्याल करेगा, ठीक है ना, सबको बुलाते थे, सबको बुलाते थे, सर से भाई भाई बना दिया था। अली रज़ी अल्लाह तआला जो है वो आखिर में रह गए थे, तो रबी अली तो हमारा भाई है, ठीक है, ये तो मेरा कजन है और मेरा भाई है, तो ठीक है। अच्छा, तो बनू नुजैर के साथ, बनू नुजैर के साथ भी एग्रीमेंट कर लिया था, बनू कुरैज़ा के साथ भी एग्रीमेंट कर लिया था। तो अब बनू कुरैज़ा जो है ना, वो आराम से मौजूद थे वहां पे, अपने अपने जो इलाका था उनका, मोहल्ला वगैरह सारा, ठीक है। तो वो मुसलमानों के थोड़ा सा एक्चुअली वो मदीना मुनव्वरा के यानी एक साइड पर थे ये लोग ना, बनू नुजैर वाले। और ये जो काफिरों का लश्कर आ रहा था, ये एक साइड से आ रहा था, ठीक है। अच्छा, बनू नुज़ैर को किताबों में फौक लिखा है, फौक, फौक कहते हैं ऊपर की साइड, ठीक है। लेकिन ऊपर से नेसेसरली जरूरी नहीं है कि नॉर्थ साइड ही मुराद हो, ठीक है। नॉर्थ साइड, नॉर्थ को हम कहते हैं फोर्थ, ऊपर नॉर्थ, ठीक है। लेकिन पुराने जमाने में जो है ना, ये नॉर्थ वाज नॉट नेसेसरीली फोर्थ, ठीक है। बल्कि आपको हमने पहले भी एक दफा क्लास में शायद बताया कि जो अब हम जिसको नॉर्थ कहते हैं, पहले उसको क्या कहते थे, और अब हम जिसको साउथ कहते हैं, पहले उसको क्या कहते थे।
साउथ
साउथ के नॉर्थ, नॉर्थ के साउथ, नहीं वो तो खैर बहुत पहले, शायद जब पोल उल्टे होंगे ना उसको कहते होंगे, लेकिन नहीं, यमन किधर है और शाम किधर है, यमन और शाम इससे याद आया,
के
वेस्ट और ईस्ट है ना। यमन जो है उसको हम यमीन, ठीक है, और शाम जो है वो उसको शिमाल, शिमाल से शाम निकला, यमीन से यमन निकला, ठीक है। तो उस जमाने में जो है ना, ये थे, यानी इसको जो है वो, अब तो उसको साउथ और नॉर्थ कहते हैं ना, ठीक है ना। लेकिन उस जमाने में यमीन, यमन को जो है वो ईस्ट, ठीक है ना, और शाम को जो है वो यानी वेस्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन चेंज होती रहती है इंसान, ठीक है ना। अब जो है वो यानी इन लोगों ने अपना एक अलग स्टैंडर्ड बना लिया है, वरना अगर आप स्पेस में चले जाए तो स्पेस में तो पूरी पूरी एक बॉल है ना भाई, है ना। अब इसमें नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, आप जिसको नॉर्थ कह रहे हो नॉर्थ है, जिसको साउथ कह रहे हो साउथ, ठीक है। बहरा, अच्छा, उन्होंने क्या लिखा, द डिसबिलीवर्स कैंप्ड ऑन माउंट उहद एंड द नेक्स्ट डे दे अटैक मदीना मुनव्वरा, दे वर सरप्राइज्ड बिकॉज़ ऑफ द ट्रेंच, बट थ्री बिलीवर्स क्रॉस द डिसबिलीवर्स क्रॉस द ट्रेंच, नहीं दे डिड नॉट कैंप ऑन माउंट माउंट उहद, नहीं माउंट उहद के ऊपर वो कैंप नहीं किया था उन्होंने, उन्होंने जबले सला और उहद के दरमियान में कैंप किया, ठीक है। बहरा, तो कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, मिन फौकुकुम व मिन असफला मिनकुम, तो इसकी तफसीर में लिखा है कि बनू नुज़ैर जो थे वो फौक में थे, और ये जो मुशरिकीन आए थे, बल्कि ये जो अहजाब आए थे, ठीक है, जिसमें मुशरिकीन भी थे, गफवान के ईसाई भी थे, और जो है वो दूसरे भी कबाइल शामिल हो गए थे, तो ये लोग असफल की तरफ थे। असफल कहते हैं नीची वाली जगह, निचली वाली जगह, ठीक है। बहरहाल, तो इस हुयई बिन अख्तब ने क्या किया कि ये जो है ना, वो एक रात को चुपके से जो है ना, ये बनू कुरैजा के जो सरदार था ना, ठीक है, उसके घर के बाहर पहुंच गया, और वहां से ना इसने इसको आवाज दी, बनू कुरैजा के सरदार को, जिसका नाम था काब बिन असद, काब बिन असद, ठीक है, यहूदी था, कुरैजा का सरदार था। तो इसने जो है वो बाहर से आवाज दी, ओए बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, ठीक है। तो ये जो काब बिन असद जो था ना, तो इसको पता था कि ये जो है ना, ये बड़ा खबीस इंसान है, ये खुद भी मारा गया, ये मुझे भी मरवाएगा, ठीक है। तो उसने जो है ना, वो जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है, अंदर चला गया, उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया, आई डोंट वांट टू सी यू, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, ठीक है। इसने बाहरी से जो है ना, वो चिल्लाना शुरू कर दिया, वो यही बिन अख्तब ने, और बोलना शुरू कर दिया कि तुम क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, है ना। उसने कहा नहीं, तुम जो है ना वो बहुत ही बुरे इंसान हो, तो मैंने तुमसे जो है ना वो बात नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन इसने खूब सारी उससे बातें करनी शुरू कर दी, बाहर से ना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके, अब इतने बड़े घर तो नहीं होते थे कि अंदर तक आवाज नहीं जाती, ठीक है। तो इसने जो है ना, वो बाहर से ही वो ऐसे ऐसे बातें करनी शुरू कर दी कि तुम फिक्र क्यों करते हो, तुम क्यों डरपोक हो हुए हो, तुम क्यों डर रहे हो, मैं जो हूँ वो इतने सारे लोगों को लेकर के आया हूँ, 12,000 लोगों को लेकर के आया हूँ मैं, और इतने सारे कबीले शामिल हैं, और हम सब ने कसम खाई हुई है, हमने कसम खाई हुई है कि हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक इन लोगों को खत्म नहीं कर देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज बिल्ला हम जो है ना वो मार नहीं देंगे और इनके मुसलमानों को खत्म नहीं कर देंगे, हम लोगों ने कसमें खाई है ना। पिछली दफा याद है कि इन लोगों ने काबतुल्ला के पास जाकर के काबतुल्ला के गिलाफ को पकड़ करके कसमें खाई, और एक किताब में लिखा हुआ है कि इन लोगों ने कसम जो खाई थी ना वो ऐसे खाई थी कि ये चिमट गए थे काबतुल्ला से, ऐसे जैसे कि जाकर के मुल्तजम से चिमट जाते हैं ना, अपना सीना जो है वो काबतुल्ला की दीवार से लगा देते हैं, ऐसे अल्लाह के घर की दीवार से अपने सीनों को लगा करके इन लोगों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में कसमें खाई थी, है ना। अल्लाह ताला को देखें कितना अल्लाह ताला के पास सब्र है, कितना ज्यादा हिल्म है, कितनी बर्दाश्त है कि अल्लाह ताला ने इसको भी बर्दाश्त कर लिया, ऊपर से कोई बिजली नहीं आई कि इन लोगों को जला करके हलाक कर दे, है ना। कोई फरिश्ता भेज देते कि मार दो इन सबको, ये क्या कर रहे हैं, मेरे घर के साथ लग करके जो है वो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो है वो कस्में खा रहे हैं, वो मेरे नाम की कस्में खा रहे हैं। कस्में भी किसके, अल्लाह की कस्में खा देते, अल्लाह के घर से लग करके और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ, ठीक है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो है असल में, ठीक है ना। ये लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे, अल्लाह के घर को भी मानते थे, अल्लाह के नाम को भी मानते थे, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला चाहते हैं कि भाई तुम मेरे नाम को तो मानो लेकिन तरीका जो है ना मेरे नबी अलैहिस्सलाम से सीखो, ठीक है ना। तो अगर नबी अलैहिस्सलाम ने तरीका नहीं सीखा बल्कि जो है वो अल्लाह के घर में पहुंच गए और वहां पे जाकर के तवाफ भी कर रहे हैं और सजदे भी कर रहे हैं और कस्में भी खा रहे हैं और फलानी चीजें भी कर रहे हैं लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते या नबी अलैहिस्सलाम की भी नहीं मानते, है ना, गुनाह कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की जो है वो पामाली कर रहे हैं, सुन्नतों को तोड़ रहे हैं, है ना, गैर शरी काम कर रहे हैं, दीन के खिलाफ काम कर रहे हैं लेकिन काबतुल्लाह के सामने जाकर के कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कोई कबूलियत नहीं। हत्ता के काबतुल्लाह के अंदर भी जाकर के करना शुरू कर देंगे ना तो अल्लाह ताला उसको भी कबूल नहीं फरमाएंगे, ठीक है जी। आप क्या कहते हैं? अच्छा, तो इसने जो है ना वो खूब इस तरह की बातें करी, तो बिल आखिर जो है ना वो जो काब बिन असद था वो फिर फिसल गया, है ना, वो इसकी बातों में आ गया, ठीक है, और उसने जो है ना फिर दरवाजा खोल दिया और इसको जो है वो अंदर आने दिया और इसकी फिर बातें जो है वो सुनना शुरू कर दी, ठीक है। अच्छा, अजीब बात ये थी कि इससे पहले खुद कह रहा था ये काब बिन असद, खुद कहता था इससे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी वादा नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैंने उनसे सिवाय सच्चाई और वादा पूरा करने के और कुछ नहीं देखा। ये खुद कह रहा था, कई दफा कहता रहा, लेकिन उसने जब इतनी बातें करी ना और ये जो है वो सुनता सुनता गया उसकी बातों को, ही गॉट एंगेज। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि ऑनलाइन तो है माशाल्लाह काफी तालिबा तलबा, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ तो हैं, तो आप सब के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, कि ये जो इस किस्म के लोग होते हैं ना, फितना परदास किस्म के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो कि अच्छाई के खिलाफ आपको उकसाने की कोशिश करते हैं। देखिए अब काब बिन असद बनू कुरैज़ा का जो सरदार था तो उसको पता था ना नबी अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, खुद कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम वादे के खिलाफ वर्जी नहीं करते और जो है वो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा, लेकिन गलती इसने क्या करी कि ये फिर भी इससे बात करता रहा, इसकी बात सुनता रहा, इसकी बात का जवाब देता रहा और इसके साथ एंगेज रहा, ठीक है ना, ये गलती जो है ना वो इसको ले डूबी, ले डूबी, ठीक है ना। बिल आखिर जो है ना वो उसने कोई ऐसी बात कर दी कि जिससे ये कन्विंस हो गया, ठीक है, जिससे ये कन्विंस हो गया। वो क्या बात इसने करी, यही कि उसको जो है वो सब सब बात दिखानी शुरू कर दी, इतने लोग लेकर आया हूँ, हमारे पास इतनी ताकत है और ये तो इतने थोड़े से लोग हैं, इनके पास तो कोई ताकत ही नहीं है और इस दफा जो है वो कस्में खाई हुई है, ये है वो है, बिल आखिर है ना मान गया ये बात, ठीक है। तो हमारे लिए इसके अंदर क्या टेक होम पॉइंट है, क्या सबक है कि भाई जब आपको सच का पता है, ठीक है ना, आप कंफर्म है किसी बात के सच्चे होने के ऊपर, तो अब जो है ना वो ऐसे लोगों से जो कि शैतान वाला काम कर रहे हैं ना, शैतान से एंगेज नहीं होना, शैतान से एंगेज नहीं होना, ठीक है ना, उससे बहस नहीं करनी है। शैतान के लिए अल्लाह ताला ने क्या हमें सिखाया है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और बस, ठीक है ना, अल्लाह ताला आप मुझे जो है शैतान से बचाइए। शैतान से बहस करने का कोई 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 रास्ता ही नहीं, क्योंकि शैतान जो है ना वो इतना बड़ा आलिम है, इतना बड़ा आलिम है कि जितना बड़ा आलिम कोई इंसान हो ही नहीं सकता सवाई नबियों, ठीक है ना, वो तो उस वक्त से इल्म हासिल कर रहे हैं ना, जब जो है वो आदम अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया था, कि आदम अलैहि सलाम को जो है वो उसने कैसे जन्नत से बाहर निकाला, है ना, उसकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है ना उस वक्त से, कि अच्छा इंसानों के साथ कैसे करना चाहिए मुझे। आदम अलैहि सलाम सीधे तरीके से नहीं मान रहे थे उनको जो है वो, उनके साथ भी जाके उसने कस्में खा, उसने भी कस्में खाई थी, शैतान ने कहा समा होगा, उसने भी कस्में खाई थी इन दोनों से जाकर के, उसने भी जो है वो सरसर बात दिखाए थे, हत्ता कि ये कह दिया था मैं तुम्हारा दुश्मन भी थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम अल्लाह के पास रहो। कैसी बात करी थी उसने, मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा अल्लाह के पास रहो, ठीक है ना, तो तुम अगर इस दरख्त का फल खा लोगे तो तुम हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के पास रह जाओगे। कितना बड़ा झूठ बोला था उसने, तो शैतान से तो बात ही नहीं करी। अच्छा, उन लोगों को पता नहीं था कि ये शैतान है, क्योंकि वो भेष बदल करके आया था आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा, ठीक है, लेकिन इसको तो पता था ना, बनू कुरैज़ा का जो सरदार था, इसको तो पता था कि ये जो है वो शैतान किस्म का आदमी, खुद कह रहे हैं कि तुम बहुत बुरे आदमी हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, लेकिन भाई बात को क्यों कर रहे हो तुम इससे ना फिर, ठीक है। तो ये जो है ना बनू कुरैज़ा का सरदार जो है वो बिलाखिर तैयार हो गया, और मुसलमानों को फिर खबर हो गई नबी अलैहिस्सलाम तक की खबर, अच्छा मुसलमानों को खबर नहीं हुई, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को खबर हो गई कि बनू कुरैज़ा ने जो है ना वो अहद शिकनी कर दी, उन्होंने अहद तोड़ दिया है, और वो फिर तैयार हो गए हैं अहजाब के साथ मिलने के ऊपर तैयार हो गए, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन सहाबा, हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन और हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन, दोनों सादैन जो एक जो थे वो खजरत के सरदार थे, एक औस के सरदार थे, ठीक है, और तीसरे जो थे वो अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन, ठीक है, इन तीनों को जो है ना वो अपने पास बुलाया और इनसे कहा कि तुम तीनों जो है ना वो जाओ बनू कुरैज़ा में, और वहां पे जाकर के पता करके आओ कि मुझ तक जो खबर पहुंची है कि बनू कुरैज़ा ने वादा तोड़ दिया है, क्या ये सच है या ये झूठ है, ठीक है, अगर ये खबर झूठ हो तो तुम आकर के आराम से मुझे बता देना कि ये खबर झूठ है, कोई मसला कोई नहीं है, भाई झूठी खबर थी, बात खत्म हो गई, लेकिन अगर ये खबर सच्ची है ना तो तुम मुझे आकर के क्लियरली नहीं बताना, बल्कि किसी तरीके से ना गोलमोल बात करके इशारों किनारों में तुम मुझे बता देना कि उन्होंने जो है वो वादा तोड़ दिया है, ठीक है। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि इधर से जो इतना बड़ा लश्कर आया हुआ था ना, और सहाबा कराम जो थे वो उनको खंदक के पीछे रखने के ऊपर मुस्तकिल जो है वो लगे हुए थे, ये चीज जो है ना वो बहुत लंबी हो गई, एक महीना तकरीबन गुजर गया, कहीं पे 15 दिन लिखा हुआ है, कहीं पे 25 दिन लिखा हुआ है, कहीं पे एक महीना, एक महीने तक ये सिलसिला चल रहा था, और मुसलमानों के ऊपर शदीद मुश्किल आई हुई, बहुत ज्यादा जो है ना वो एक, यानी भाई देखिए एक दिन की लड़ाई होती है ना, जैसे बदर में हुई, बहुत मुश्किल लड़ाई थी, वो लोग बहुत ज्यादा थे और बहुत उनके पास हथियार थे, मुसलमान बहुत कम थे, लेकिन जो भी था क्विक हो गया, खत्म हो गया, ओहद की लड़ाई एक दिन में, जो भी होना था एक दिन में खत्म हो गया, ठीक है ना, जो चीज लंबी चल जाती है ना वो एक्चुअली फिजिकली भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और मेंटली भी बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि टाइम लैप्स के साथ जो है ना ये एक खास मेंटल टॉर्चर इसके साथ लगा हुआ होता है, तो सहाबा के लिए एक यानी फिजिकल टॉर्चर भी था और मेंटल टॉर्चर भी था, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम की को इस बात की बड़ी फिक्र थी कि शैतान जो है ना वो कहीं कुछ कुछ मसला ना कर दे और सहाबा कराम को डीमोटिवेट ना कर दे, सहाबा कराम किसी तरीके से ना डीमोटिवेट और ये इस तरह से मसले ना हो जाए, तो आपसे सुनम को फिक्र ये थी कि बनू कुरैज़ा की अगर गद्दारी का सहाबा को पता चलेगा तो इनके लिए और मुश्किल हो जाएगी बात, ठीक है, तो इस वजह से ना चुपके से बताने को कहा कि अगर उन्होंने वाकई गद्दारी कर दी है तो मुझे चुपके से आकर के बताना, यानी चुपके से मुराद ये लोग तो सारे मौजूद होते ही थे, तो अब कान में आकर के तो उन्हें बता नहीं सकते, ये था कि भाई कोई इशारों इशारों से बता देना, ठीक है। तो अब ये तीनों जो है ना वहां पहुंचे और वहां पे जब गए तो हर बंदा ही इसके बारे में बातें कर रहा है, बनू कुरैज़ा के लोग जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं, इनको क्लियर पता चल गया कि हाँ भाई ये बात सच है कि इन्होंने गद्दारी कर दी है, ठीक है। तो ये तीनों वापस आए और इन्होंने आकर के नबी अलैहिस्सलाम को ये कहा कि अज़ल व कारा, अव्वल व कारा, ये दो कबीले थे, कबीला अव्वल और कबीला कारा, ठीक है, इन दोनों ने जो है ना वो मुसलमानों के साथ پہلے غداری کری تھی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ پکڑ کے کافروں کے حوالے کر دیا تھا، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ خبیب رضی اللہ عنہ کو کافروں نے کتنی بری طریقے سے شہید کیا تھا مکہ مکرمہ، ہے نا؟ تو اول وقارہ جو ہے نا یہ غدار لوگوں کے نام تھے نا، تو انہوں نے خالی اول وقارہ کہہ دیا، نبی علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو قریظہ نے بھی غداری کر دی ہے جیسے اول وقارہ نے غداری کری تھی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال شروع میں تو کسی کو پتا نہیں چلا، لیکن ایونچولی یہ بات لیک آؤٹ ہو ہی گئی، ٹھیک ہے؟ وہاں سے کسی اور نے آ کے بتا دیا ہوگا یا کسی طریقے سے کہ ہاں بھی بنو قریظہ نے بھی جو ہے نا وہ غداری کر دی ہے۔ اچھا، جب یہ لوگ بنو قریظہ کے سردار کے پاس گئے تھے نا اور ان کو یاد دلایا تھا یہ اسد بن قعب بن اسد کو، تو اس نے تو ایسا برا جواب دیا، اس نے کہا کہ کون محمد ہے، میں آئی ڈونٹ نو اینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا ان کو، کون سا وعدہ، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت ہی برا اس نے جواب دیا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ یہ جو کافروں کے لشکر تھے احزاب والے، یہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود تھے اور ہر شخص جو ہے نا وہ مسلمانوں کا خون ہی کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر نا اس واقعے کو فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ بڑی آزمائش تھی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یاد کرو اس وقت کو، اذ جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے جب، لیکن جب قرآن مجید کی آیت میں اذ آتا ہے نا تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم یاد کرو اس وقت کو، ریممبر دیٹ ٹائم، جب کہ تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی وہ لوگ آ گئے تھے تمہارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے۔ اوپر سے جو ہے وہ بنو قریظہ والے اٹیک کرنے کے لیے تیار تھے، اور نیچے سے مراد جو ہے یہ احزاب والے اٹیک کرنے کے لیے تیار تھے، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، ٹھیک ہے، کہ جس وقت جو ہے نا لوگوں کی یعنی جو آنکھیں تھیں نا وہ یعنی ان کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، یعنی جب بہت زیادہ آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں نا تو آپ صاف دیکھ نہیں سکتے، ہے نا؟ چشمہ تو خیر اسی وجہ سے لگاتے ہیں، لیکن ٹینشن کی وجہ سے پھر انسان ٹینشن کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کلیئرلی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ زاغت الابصار، ٹھیک ہے نا، نظریں جو ہے نا وہ خیرہ ہونا شروع ہو گئی تھیں، وبلغت القلوب حناجر، اور لوگوں کے دل جو تھے نا وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، یہ اردو کا محاورہ ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، لیکن عربی میں کہتے ہیں کہ جب قلوب جو ہے نا وہ اندر سے نکل کر کے حلق میں آ کر کے پھنسنا شروع ہو گیا، حناجر کہتے ہیں اس حلق کو، ٹھیک ہے، حنجر۔ وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله وتظنون بالله ظنونا، اور لوگ جو تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا شروع کر، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد آئے گی نہیں آئے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ کمزور ایمان والے یا منافق لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون، کہ اس جگہ پر نا ایمان والوں کو آزمایا گیا تھا، اور کیسے آزمایا گیا تھا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ جھنجھوڑ دیا گیا تھا مسلمان ایمان والوں کو، زلزلوا زلزالا شدیدا، شدید طریقے سے ان کو جو ہے نا جیسے زلزلہ، اب یہ فزیکل زلزلہ کوئی تھوڑی آیا تھا، یہ ایک ایموشنل زلزلہ، ٹھیک ہے، جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ڈال دیا تھا، زلزالا شدیدا، ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہا ہے زلزالا شدیدا، بہت شدید قسم کا زلزلہ، بہت شدید قسم کی آزمائش آئی تھی، کون کہہ رہا ہے یہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جیسے آپ لوگ پہلے بھی اس کو کچھ سن چکے ہیں نا بیانات وغیرہ میں بھی، کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ کسی چیز کو بڑا کہے تو اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ تو بہت چھوٹا سا ہے تو اس وجہ سے اس کو تو ہر چیز ہی بڑی نظر آتی ہے، کیونکہ چھوٹا سا بچہ ہے نا، لیکن اگر کوئی بہت بڑا انسان جو ہے وہ کسی چیز کو بڑا کہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بھائی یہ واقعی بڑی چیز ہے، جبھی تو یہ بڑے صاحب جو ہیں یا کسی اس کو بڑا کہہ رہے ہیں، بڑے صاحب جو ہیں وہ کسی چھوٹے سے جو ہے وہ چوہے کو تو بڑا نہیں کہیں گے نا، وہ تو کسی بہت بڑی چیز کو بڑا کہیں گے، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو کے اوپر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اگر شدید کہہ رہے ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی بہت شدید ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، منافقین نے اس وقت کیا کہنا شروع کر دیا، یقولون ان بیوتنا عورا، ہے نا، तो जो 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 काफिर यानी जो कुछ मुनाफिकीन थे, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी हम जो है ना वो हमें वापस जाना है, हमें वापस जाने दीजिए, क्योंकि ना ये जो बनू कुरैजा वाले हैं ना, ये मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद हैं, ये ना हमारे ऊपर हमला कर देंगे, और हमारे घर जो है ना, तो हमने तो अपने घरों की हिफाजत को कोई इंतजाम ही नहीं किया था, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि बनू कुरैजा वाले भी हमारे दुश्मन हो जाएंगे। तो हमारे घरों की दीवारें जो है ना वो तो छोटी छोटी हैं, ये लोग आसानी से हमारे घरों की दीवारों को खड़ांग करके अंदर आ जाएंगे और जो है ना वो हमारे फैमिली वालों को मार देंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारे जो घर है ना ये तो एक्सपोज हैं दुश्मनों से, वमा ही अभी औरा, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं नहीं नहीं कोई नहीं, कोई एक्सपोज नहीं थे दुश्मनों से। ठीक है ना, इन यूरिदूना इल्ला फिरार, बल्कि ये लोग जो है ना असल में भागना चाह रहे थे, यहाँ से फरार चाह रहे थे, इस वजह से ये झूठ बोल रहे थे कि हमारे घर जो है वो एक्सपोज है, लेकिन इनके घर कोई एक्सपोज नहीं थे। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है, मतलब उसकी अपनी नस्बत पक्की नहीं थी ना मेरे सलाह साहब ने, बना आकर चेक वो दावा। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा, इसके मुकाबले में जो मोमिनीन थे उनका क्या मामला था, मुनाफिकीन का क्या मामला था, उन्होंने कहा कि जी हमें तो आप जाने दीजिए, हम अपने घर वालों की हिफाजत का इंतजाम करना चाहते हैं, हमारे घर जो है वो बड़े कच्चे हैं। ठीक है, और ईमान वालों का क्या हाल था, ईमान वाले कह रहे थे वलम्मा रअल मुमिनून अल अहजाब, कि जब ईमान वालों ने इन अहजाब को देखा ना, ये जो 12,000 का लश्कर आया हुआ है और इधर से भी जो है वो यहूदी भी हमारे खिलाफ हो गए, तो उन्होंने कहा कालू हादा मा वअदना अल्लाह व रसूल, ये तो वही है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था कि भाई तुम्हें तो आजमाया जाएगा, है ऐसी कोई थोड़ी तुम्हें जन्नत दे दी जाएगी, तुम्हें तो आजमाया जाएगा, तो ये तो आजमाइश है जिसका कि अल्लाह उसके नबी अलैहिस्सलाम ने हमें पहले से बता दिया था। इन्होंने कहा वसदकल्लाहु रसूलुहु, कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सच कहा जो उन्होंने कहा। ठीक है, बिल्कुल सच कहा, वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानुहुम व तस्लीम, और इस आजमाइश ने इनको इनके ईमान में और इनकी सबमिशन में और ज्यादा बढ़ा दिया, और ज्यादा पक्के मुसलमान बन गए, और ज्यादा पक्के ईमान वाले बन गए, है ना, कि भाई ये जो सब कुछ हो रहा है ना ये तो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू व्हाट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी टोल्ड अस, उन्होंने पहले समय बताया है। ठीक है, तो यही फर्क होता है काफिरों में, मुनाफिकीन में और मुसलमानों में, कि मुनाफिकीन जो है वो ऊपर ऊपर से बड़ा, हाँ हम आपके साथ देंगे, हम आपके साथ हैं ये वो, लेकिन जब आजमाइश आती है ना तो वो उस वक्त जो है वो पतली गली से निकलने की, हमारे कहते हैं पतली गली से निकलने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फरार, लेकिन जो ईमान वाले होते हैं वो और ज्यादा पक्के हो जाते हैं, और ज्यादा उनका ईमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम को इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल था, है ना, ये मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ी आजमाइश आई हुई है। टाइम तो पूरा हो गया, चलो एक बात और करके फिर हम खत्म करते हैं क्लास को, कि मुसलमान हर तरफ से घेर लिए गए। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो फिर एक मंसूबा सोचा अपने ही जहन के अंदर, एक बात सोची आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या थी कि आपको याद है पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये जो हुयई बिन अख्तब था ना, यहूदियों का जो सरदार था बनू नज़ैर वाला, तो इसने कबीला गदफान वालों को क्या वादा किया था, इसने उन लोगों को एक रिश्वत दी, ब्राइबरी, कि तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें इसके बदले में क्या देंगे, क्या देंगे सी? एनीवन ऑनलाइन साइट, इसने उन लोगों को एक एक प्राइस तय करी थी, मदद करने की प्राइस, कि अगर तुम हमारी मदद करोगे ना तो हाँ खजूर, खजूर कहाँ के खजूर, कहाँ के, खैबर के आधे खजूर। ठीक है ना, खैबर के अंदर बहुत ज्यादा खजूरों की प्रोडक्शन होती थी, तो खैबर के जितने खजूर निकलते हैं ना हम उसके आधे खजूर जो है ना वो तुम्हें दे देंगे, तो वो इसके ऊपर तैयार हो गया था, वरना वो तो अपने आराम से बैठा हुआ था अपनी जगह के ऊपर। ठीक है, तो इतनी बड़ी उसको जो है वो पैसे मिल रहे थे यानी हुजूर की शक्ल में, तो तैयार हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं भी जो हूँ ना फिर ऐसे ही कोई स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता हूँ कि खैबर में जो गफ्फान, वो सॉरी जो गफ्फान के कबीले के सरदार है ना, तो उनसे बात करता हूँ और उनको मैं मदीना मुनव्वरा की खजूरों की ऑफर करता हूँ, ठीक है, कि मदीना मुनव्वरा की जो है ना वो मैं 1/3 खजूर वो मैं तुम लोगों को दे दूंगा अगर तुम लोग जो है ना वापस चले जाओ, ठीक है। तो गफ्फान के दो सरदारों को, अच्छा ये इस वाले सरदार से बात नहीं करी जिससे कि हुयई बिन अख्तब ने बात करी थी, वो इसका दोस्त था, उसने इसकी बात मान ली थी। नबी अलैहिस्सलाम ने दो दूसरे सरदारों से बात करी और वो लोग जो है ना वो मदीना, वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आ भी गए थे किसी तरीके से बातचीत करने के लिए, क्योंकि जब बातचीत होती थी लोग आ जाते थे, लोग लोगों को आसानी से आने दिया जाता था, तो वो लोग आ भी गए थे और नबी अलैहिस्सलाम ने जो है ना वो किसी से बाकायदा एक एग्रीमेंट लिखवा भी लिया था इस बात का कि अगर तुम लोग वापस चले जाओगे तो हम तुम्हें मदीना मुनव्वरा की 1/3 खजूरें दे देंगे, ठीक है। लेकिन अभी उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं हुए थे, ठप्पा नहीं लगा था, मोहर जो होती थी ना नबी अलैहिस्सलाम की खत्म होती थी खत्मे नबूवत, वो नहीं लगी थी, ठीक है। तो उस वक्त जो है ना नबी अलैहिस्सलाम ने अपने इन दो सहाबा से, सादैन से, साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और साद बिन मआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि मदीना मुनव्वरा के सरदार हैं, अब खजूरें भी तो मदीना मुनव्वरा ही की देनी थी ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इन दोनों सादैन से जो है वो मशवरा किया, ठीक है, कि तुम्हारा क्या ख्याल है। जी आप पूछे सवाल। उन्होंने तो बात मान ली थी, ठीक है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने भी जाहिर है ऑफर नबी अलैहिस्सलाम ने करी थी और गफ्फान के दोनों सरदारों ने बात मान ली थी, लेकिन अभी मुआहदे के ऊपर दस्तखत नहीं हुए थे, दस्तखत होना जो है ना इससे बात फाइनल होती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इन सादैन से जो है वो मशवरा किया कि तुम लोग क्या कहते हो, ठीक है। तो उस मौके के ऊपर ना हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ये जो आपने ऑफर का सोचा है ना, तो क्या ये अल्लाह का हुक्म आया आपके पास, कोई वही नाजिल हुई आपके ऊपर कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, ठीक है। तो अगर अल्लाह का हुक्म आया है ना तो ऑफ कोर्स हम तो कुछ भी नहीं कह सकते इसके ऊपर, है ना, हम आमन्ना व सद्दक़ना, हम जो है वो आपकी बात मानेंगे क्योंकि अल्लाह ताला का ये हुक्म है, ठीक है। या ये कि आपके दिल में कोई बात पैदा हुई है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो जुबान से बात निकलती है वो अल्लाह ताला का हुक्म ही होता है ना, वो भी तो अल्लाह का हुक्म है कि भाई अल्लाह ताला ने आपको जो है वो वही नाजिल फरमा दी, ठीक है, तो उसके भी हम खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जो है ना ये वाली बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, आप चाहते नहीं है ऐसा करना, लेकिन आप सिर्फ इसलिए ये काम करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि हम लोग बड़ी तकलीफ में हैं, बड़ी मुश्किल में हैं, और जो है ना वो इस तरीके से जो है ना वो हमारी मुश्किल जो है वो दूर हो जाएगी, तो चलो मैं इस तरह से कोई काम कर लेता हूँ, लेकिन आपकी तबीयत चाह नहीं रही है ये काम करने के, ठीक है ना, तो क्या ये मामला है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ सिर्फ यही मामला है, ना तो अल्लाह का हुक्म आया है, ना मेरे दिल में अल्लाह ताला ने कोई बात पैदा करी है, ठीक है ना, कि ऐसा होना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन तुम लोगों की तकलीफ और मुश्किल की वजह से जो है ना वो मैं बस ये प्रपोज कर रहा हूं। तो साद बिन मुआज ने इसके ऊपर जो है ना वो बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिस वक्त ना बुतों को पूछते थे और अल्लाह ताला को हम जानते भी नहीं थे, हम तो बुतों को ही अपना परवरदिगार अपना जो है वो सब कुछ समझते थे ना, तो उस वक्त जो है ना वो इन लोगों की हिम्मत नहीं थी कि ये मदीना मुनव्वरा आ करके जो है ना वो हमारे खजूरों को ले जाए, ठीक है ना, हमसे एक खजूर भी लेने की इनमें हिम्मत नहीं थी, हत्ता कि ये हमारे मेहमान हो तो हम इनको खजूर खुद पेश करते थे, या ये कि हमसे खजूर खरीद लें तब हम इनको खजूर बेच देते थे, अदरवाइज ये हमसे खजूर ले जाने की इनमें हिम्मत नहीं थी। ये तो उस जमाने में था जबकि हम अल्लाह को नहीं जानते थे, हम जो है ना वो बिल्कुल ही ऐसे बुरे बुतों को पूजा करते थे, ठीक है ना, और अब तो अल्लाह ताला ने हमें अपनी पहचान अता फरमा दी, हम अल्लाह ताला को जान गए हैं और अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिए से हमें इतनी इज्जत अता फरमा दी है, ठीक है ना, अब हम अपना फल इन लोगों के हवाले कर दें, अब हम अपना फल इन लोगों के हवाले कर दें, हमें कोई जरूरत नहीं है इनकी मदद की, हमें इनसे मुसालियत करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनको सिर्फ तलवार देंगे, तलवार देंगे का मतलब हमारे और उनके दरमियान में है ना, ये तलवार फैसला करेगी, वी विल फाइट देम, हम इनको कोई खजूर वजूर नहीं देंगे, हम सिर्फ उनको तलवार का वार देंगे, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, वो साद रतानन की जो अजम था, हौसला था और गैरत ईमानी को देख करके उन्होंने फरमाया कि ठीक है तुम जो चाहो वही करो, हम जो है वो इनके साथ लड़ाई करेंगे, जैसे तुम चाहते हो कि लड़ाई करना तो हम भी लड़ाई ही करेंगे, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। तो साद रतानन ने, साद बिन मुआज ने वो जो तहरीर लिखी जा चुकी थी ना, उसको लिया नबी अलैहिस्सलाम से और उसको मिटा दिया। ये नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से नहीं लिखी थी, सुलह हुदैबिया अगर किसी को याद है, सुलह हुदैबिया ने आपसे सुन अपने हाथ से लिखी थी, ठीक है। यहाँ पे हाथ से कोई थोड़ी किसी और से लिखवाई होगी, इन्होंने मिटा दिया उसे, ठीक है ना। अच्छा, गतफान के जो दो सरदार वहां पे मौजूद थे ना, तो उन्होंने जब साजतान की ये बातें सुनी ना, तो उनका दिल भी जो है ना वो डरना शुरू हो गया कि ओ ये लोग तो इतने पक्के, ये तो इतने बहादुर हैं, ये तो कोई मुसालियत नहीं करना चाहते, वो भी डर करके फिर वहां से वापस गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपनी क्लास रोकनी पड़ेगी क्योंकि टाइम खत्म हो गया, अभी बहुत सारे वाकयात ग़ज़वा खंदक के और भी बाकी हैं, तो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
Recording stopped.